الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ते हैं। मारफुल कुरान जिल्द नंबर 3 जो है वो हमारी रेफरेंस बुक है, और आयात नंबर 15 से लेकर के 18 तक जो अभी आपके सामने पढ़ी गई उनके खुलासे तफसीर को हम मुकम्मल कर चुके थे पिछली क्लास में पढ़ करके। और आज जो है वो मारिफ को मसाइल जो के मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इन आयात के काफ़ी मुख्तसर लिखे हैं, सिर्फ एक पेज पर ही मुश्तमिल है, वो हम आज पढ़ लेते हैं। फिर आगे की आयात इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो इन आयात में जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो तो तर्जुमे में कवर हो गया, फिर खुलासे तफसीर में दोबारा कवर हो गया। अब मारूफ मसाइल में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सिर्फ एक मसले को डिस्कस करते हैं। वो क्या कि इस आयत में नसारा के एक ही कौल की तरदीद की गई है। कौन सी वाली आयत? लकद कफर अल्लदीना कालू इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ये वाली आयत, ठीक है, 17वीं आयत जो है इसमें क्या क्या गया है कि नसारा के एक ही कौल की तरदीद की गई है जो उनके एक फिरके का अकीदा है, यानी यह के हजरत मसीह माअज़ुल्लाह ऐन अल्लाह ताला है। ठीक है, नसारा में फिरके बन गए थे, ठीक है, और ये फिरके मसलकी फिरके नहीं थे, जैसे कि हमारे यहाँ मसलकी फिरके होते हैं ना, वो फिरके असल में नहीं होते, वो मसालिक होते हैं। जैसे मजहब भी कहते हैं उनको, मसलक भी कह सकते हैं, जैसे हनफी मसलक, शाफिई मसलक, हम्बली मसलक और मालिकी मसलक, ठीक है, इनको मसलक भी कहते हैं, इनको मजहब भी कहा जा सकता है। चलने के तरीके, दोनों का मतलब एक ही होता है, चलने का तरीका या जाने का तरीका, ठीक है, ये असल में फिरके मुराद नहीं होते। यहां पर जिस फिरके की बात हो रही है ना, वो फिरका बंदी जो होती है वो बाकायदा अकीदे के बुनियाद पर, जो अकीदे के बुनियाद पर जो फर्क बनता है ना, जो डिवाइड बनता है, उसको फिरका कहा जाता है। लफ्जी तौर पर तो फिरका किसी भी दो ग्रुप्स को कहा जा सकता है लफ्जी तौर पर, लेकिन इस्तेलाही तौर पर यानी इस कॉन्टेक्स्ट में, दीन के कॉन्टेक्स्ट में फिरके का लफ्ज जो है वो अकायद के बुनियाद पर जो डिवीजन होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो दीन इस्लाम के अंदर फिर अकायद की बुनियाद पर डिवीजन हुई। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से भी वो डिवीजन साबित है। आपने फरमाया जिसका के मफहूम बनता है कि जो बनी इसराइल थे उनमें 72 फिरके बने, 72 फिरके। यहाँ पर तो सिर्फ तीन फिरकों का जिक्र है, तो वो तीन फिरके जो है वो खाली ईसाइयों के तीन फिरकों का जिक्र है, और ये भी कह सकते हैं कि वो हाई लेवल तीन फिरकों का जिक्र है, उसके अंदर मजीद बहुत छोटे छोटे और भी बहुत सारे फिरके, ठीक है, लेकिन हाई लेवल तीन फिरके बने, और वो भी खाली ईसाई ईसाइयत की बात हो रही है, यहूदियत की यहाँ पे बात नहीं हो रही। नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है उसमें बनी इसराइल की बात है, यानी जो यहूदी यहूदियों के लिए बनी इसराइल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उसमें 72 फिरके बने, और आप सुन फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके बने, 73, ठीक है, तो वो जो 73 फिरते हैं ना वो भी अकायद के डिफरेंस पर है, ठीक है, डिफरेंस इन अकायद वर्सेस डिफरेंट इन फिका, हाउ बेस्ट टू डू आमाल। हाँ, तो हम जो फिरके की बात करें वो डिफरेंस इन अकायद की बुनियाद पर करें ना, वो जो मसलक होता है वो डिफरेंस इन फिका होता है, और वो फिका भी जो होती है वो ये होता है, यानी वो फिका भी क्या होती है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीका क्या है, ठीक है, ये तरीका सुन्नत है कि वो तरीका सुन्नत है कि फलाना तरीका सुन्नत है कि फलाना तरीका सुन्नत है, इस डिफरेंस की बुनियाद पर मसलक या मजहब बनते हैं, ठीक है, अकायद की डिफरेंस की बुनियाद पर मसलक या मजहब नहीं बनते। तो अकायद की बुनियाद पर तो 73 फिरके नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि मेरी उम्मत में बनेंगे, और उनमें से सिर्फ एक फिरका जो है वो फिरका नाजिया होगा, नाजिया का मतलब निजात पाने वाला। तो सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका होगा, तो आप सुन फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, के जिस पर मैं और मेरे सहाबा है ना, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके को फॉलो करेंगे ना वो फिरका नाजिया, ठीक है, तो इसी वजह से इस फिरके का नाम भी अहले सुन्ना वल जमाआ पड़ गया, ठीक है, अहले सुन्ना वल जमाआ, क्योंकि सुन्नत क्या, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका और सहाबा का तरीका, उसके लिए जमात का तरीका, क्योंकि सहाबा पूरी एक जमात थे, ठीक है, तो बाकी जो 72 फिरके होंगे ना वो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के तरीके पर नहीं होंगे, बल्कि वो फिर अकली एतबार से, या तो अकल की बुनियाद पर उन्होंने कुछ गढ़ लिया कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होगा, ये होगा वो होगा, या तो अकल की बुनियाद पर, या जो है वो किसी शर पसंद ने आकर के उनको जो है वो अपने पीछे चलाना शुरू कर दिया, और वो उसके पीछे चल गए, चल पड़े उसके पीछे, ठीक है, जैसे अब्दुल्ला बिन सबा एक यहूदी था, तो उसने जो है वो बातें बनानी शुरू कर दी, उसने अपनी अकल से नहीं बनाई, उसने तो बाकायदा यानी सोच समझ करके मुसलमानों में तफरका डालने के लिए उल्टी सीधी अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बातें करनी शुरू कर दी, उनके मोहब्बत में और उनकी शान में और उनकी फलाने में ढमकाने में बातें करनी शुरू कर दी, और अपने आप को उसने मुसलमान जाहिर किया, हालांकि वो था यहूदी, ठीक है। अब जो थे ना बहुत सारे लोग उस जमाने के, यानी ये किस जमाने की बात हो रही है, ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने की बात हो रही है, बिल्कुल इब्तदाई दौर है ये मुसलमानों का, उस जमाने में ये शख्स जो था वो भेष बदल करके मुसलमानों में दाखिल हुआ, और इसने जो है वो इस किस्म की हरकतें करनी शुरू कर दी। ये अबू लुलु फिरोज जिसने उमर रज़ियल्लाहु को शहीद किया था ना, ये भी कहा जाता है कि उसी के साथियों में से था, ये उसी के साथियों में से था, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी के साथियों में से था, ठीक है। तो अब लोगों ने जिन्होंने इसको अपना बड़ा बना लिया और इसकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी, वो इसके फिरका बन गए। अब इन लोगों ने अपनी कोई अकल इस्तेमाल नहीं करी कि भाई ये बात कैसी कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या दलील है इसके पास जो ये बातें कर रहा है, नहीं, बस भेड़ चाल, राइट, भेड़ चाल चलनी शुरू कर दी, उसकी किसी बात से मुतासर हो गए, उसकी कलाम से मुतासर हो गए, उसकी दौलत से मुतासर हो गए, उसकी जो है वो चिकनी चपड़ी बातों से मुतासर हो गए, बस उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से जैसे पिछले 150 साल के अंदर, 200 साल में बरेसगीर के अंदर एक शख्स मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है, तो उसने जो है वो उल्टी सीधी बकवास करनी शुरू कर दी, और कुछ लोग जो है वो उसकी बात मान करके उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये बातिल फिरके जो है ना ये फिर इस्लाम के अंदर बने, लेकिन ये अकायद की बुनियाद पर बने, ठीक है, और वो अकायद की डिफरेंसेस जो थे वो काफी सिवियर किस्म के डिफरेंस है, वो छोटे मोटे जमनी अकायद का डिफरेंस नहीं था, बल्कि बुनियादी अकायद में डिफरेंसेस बनाए। तो इसी तरीके से ईसाइयों में भी बुनियादी अकायद के डिफरेंसेस बन गए, ठीक है। तो एक अकीदा जो था वो क्या कि भाई ईसा और अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला एक ही है, ठीक है। दूसरा फिरका जो पीछे मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, नऊज बिल्ला, ठीक है। और तीसरा फिरका जिसका नाम याकूबिया लिखा जाते हैं, तो वो ये था, बल्कि मलकाइया, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को तीन खुदाओं में से एक खुदा मानते थे। तो ये तीन बुनियादी फिरके थे, ठीक है। तो हजरत लिख फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने तरदीद जो करी है ना, वो उन तीनों में से सिर्फ एक फिरके की तरदीद करी है, मगर तरदीद जिस दलील से की गई है वो दलील तमाम फिरकों के अकायदे बातिला पर हावी है। यानी वो ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव दलील है कि जो कि तीनों को जो है ना वो रिजेक्ट कर देती है जो भी तौहीद के खिलाफ है, ठीक है। क्योंकि तीनों ही तौहीद के खिलाफ है ना, तीनों ही जो है वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना, तीनों ही हरकत कर रहे हैं शिर्क का की हरकत। तो अल्लाह ताला ने एक दलील दी जिसने के तीनों को, क्योंकि दो के इन तीनों के दरमियान जो कॉमन फैक्टर था वो शिर्क ही था। कॉमन फैक्टर क्या था? शिर्क ही था। तो अब अगर आपने उस कॉमन फैक्टर को डिनाई कर दिया तो तीनों का डिनायल हो गया, ठीक है। तो खुदा सॉरी खुआ खुदा का बेटा होने का अकीदा हो या तीन खुदाओं में से एक खुदा होने का अकीदा फासदा हो, इससे सब का रद और इब्ताल हो गया। तो वो क्या दलील दी? मैं यमलिकु मिन अल्लाह शैअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु मन फिल अर्ध जमीआ वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ध वमा बैनहुमा यखलुकु मा यशा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, ठीक है। कि अल्लाह ताला जो है ना वो अकेले हर चीज के ऊपर कादिर है, हत्ता के जिनको तुम अल्लाह का बेटा कहते हो या अल्लाह ताला जैसा कहते हो या अल्लाह ताला ही कहते हो, अल्लाह ताला उसको भी हलाक करने के ऊपर कादिर है। और इस जगह आगे फरमाते हैं कि और इस जगह हजरत मसीह और इनकी वालिदा का जिक्र फरमाने में दो हिकमतें हो सकती हैं। जो फरमाया कि अल्लाह ताला चाहे तो कौन रोक सकता है अल्लाह ताला को ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को हलाक करने से, कौन रोक सकता है? तो अब ये क्यों इस तरह से फरमाया अल्लाह ताला ने, फरमाते हैं कि इसमें दो हिकमतें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी। अव्वल तो ये कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का हक आला के सामने ये इज्ज़ कि वो अपने आप को अल्लाह से बचा सकते हैं ना अपनी माँ को अल्लाह से बचा सकते हैं, कि जिनकी खिदमत और हिफाजत को शरीफ बेटा अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता है, वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला से तो अपनी माँ को भी नहीं बचा सकता, ठीक है। तो उनका ये कहना जो है ना, तो ये तुम्हारे तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम खुद इसका इकरार करते, क्योंकि ये उनकी किताबों के अंदर भाई ब्लंडर्स वाली बात है कि ऐसी कोई चीज जो है वो रह गई, ठीक है, और उनकी निगाहों से वो इग्नोर हो गई, वो बोझ ओझल हो गई, और अल्लाह ताला ने भुला दिया कि भाई हाँ भाई इस वाली लाइन को भी निकालना था किताब में से, है ना, इस वाली लाइन को भी निकालना था, वो निकालना भूल गए। अब जब वो निकालना भूल गए तो उस लाइन को जो है वो अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरे ये कि इसमें उस फिरते के ख्याल की भी तरदीद हो गई जो हजरत मरियम को तीन खुदाओं में से एक खुदा मान रहे हैं, ठीक है, कि मरियम अलैहिस्सलाम को भी हलाक करना जो है वो अल्लाह ताला के बस में है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि इस जगह हजरत मरियम, हजरत मसीह और मरियम अलैहिस्सलाम की मौत को बतौर फर्ज के जिक्र फरमाया है, ठीक, बतौर फर्ज के, क्योंकि अगर अल्लाह चाहे तो दोनों को हलाक करने पर कुदरत रखता है, कोई नहीं रोक सकता अल्लाह ताला को, ठीक है। हालांकि नुज़ूले कुरान के वक्त हजरत मरियम की मौत महज फर्जी नहीं थी बल्कि वाकई हो चुकी थी, यानी मरियम अलैहिस्सलाम बाकायदा इंतकाल फरमा करके आलम बरज़ख में मुंतकिल हो चुकी थी, जैसे हर इंसान मुंतकिल हो जाता है इंतकाल के वक्त, ठीक है। तो अब यहां पर अल्लाह ताला ऐसी क्यों कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो हलाक कर सकता है, हालांकि वो तो पहले ही हलाक कर चुका है अल्लाह ताला, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा अल्लाह ताला ने? तो हजरत लिखते हैं कि इसकी वजह या तो तगलीब है, ठीक है। तगलीब का मतलब कि जैसे आप कोई बात करते हैं तो कोई छोटी बात प्रूव करने के लिए आप कोई बड़ी बात कह देते हैं, ठीक है, तो उस बड़ी के तहत में वो छोटी बात भी आ जाती है, कि जब अल्लाह ताला जो है वो हर काम कर सकता है तो अल्लाह ताला जो है वो ये काम क्यों नहीं कर सकता जो छोटा सा एक काम है, ठीक है ना। अल्लाह ताला कायनात को बना सकता है तो अल्लाह ताला जो है वो मरने के बाद इंसानों को दोबारा क्यों नहीं बना सकता? जब अल्लाह ताला पहली दफा हर चीज को बना सकता है जबकि कोई प्रेसिडेंस भी मौजूद नहीं था, तो दूसरी दफा बनाना तो और भी आसान है ना। तो बड़ी मुश्किल काम के तहत में छोटी बात तो दाखिल हो गई, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं कि ये इसकी एक वजह या तो तगलीब है, ठीक है, यानी असल में मौत मौत ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर फर्ज के बयान करना था, ठीक है, कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौत दे सकता है, ठीक जिसको कि तुम खुदा का बेटा कहते हो। तो माँ का जिक्र जो है वो भी इसी उनवान के जिमन में कर दिया गया, अगरचे कि उनकी मौत वाकई हो चुकी थी। तो जिसको तुम बेटा कहते हो तो ज्यादा ताकतवर तो बेटा होता है ना, और ज्यादा जो है वो करीब भी जो है वो बेटा होता है, ज्यादा जो है वो बाप का जो इन्हिसार होता है वो बेटे के ऊपर होता है। तो अल्लाह ताला तो ईसा अलैहिस्सलाम को हलाक करने के लिए तैयार है, जिस वक्त भी चाहे हलाक कर सकता है, और वो करेगा हलाक। तो बीवी को तो हलाक करना कोई मसला ही नहीं है। तो तुम बीवी यानी तुम तो जो मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह ताला की बीवी कैसे कह रहे हो भाई? हलाकत से कम की अल्लाह ने बात ही नहीं करी, बात ही शुरू करी कहां से? हलाकत से बात शुरू करी। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारी चीजें उसके अंदर कवर हो गई कि खुदा उदा होना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह ताला तो डायरेक्ट हलाकत की बात कर रहे हैं भाई, ईसा को भी और मरियम को भी। ठीक है, तो ये तकलीफ की ये फॉर्म हो गई एक तरह से समझने के लिए बस थोड़ा। अच्छा, और ये भी कहा जा सकता है कि मुराद ये है कि जिस तरह हजरत मरियम पर हम मौत मुसल्लत कर ही चुके हैं, हजरत मसीह और दूसरी सब मखलूक पर भी इसी तरह मुसल्लत कर देना हमारे कब्जे में है। ठीक है, जिनको तुम नाउज बिल्ला बीवी कहते हो उनको तो हम पहले ही मार चुके हैं, तो बाद में उनको बाद में मारेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा मुश्किल काम है भाई हमारे। और यखलुकु मा यशा में ईसाइयों की इसी अकीदे बातिला की मंशा को बातिल करना है, क्योंकि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा बनाने का असल मंशा उनके यहाँ ये है कि उनकी पैदाइश सारी दुनिया के कायदों के खिलाफ बगैर बाप के सिर्फ माँ से हुई है। अगर वो भी इंसान होते तो कायदे के मुताबिक माँ और बाप दोनों के जरिए से पैदाइश होती। ठीक है, तो ये बस उनकी एक अजम्पशन है कि उन्होंने अपने थोड़े से इल्म की बुनियाद पर जो है ना वो एज्यूम कर लिया कि जिस तरह बाकी लोग जो है वो बाप के बगैर पैदा नहीं हो सकते, तो इसी तरीके से जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम भी बगैर बाप के पैदा नहीं हो सकते। तो अब बाप जो है वो नजर तो आता नहीं है, और मरियम अलैहिस्सलाम ने तो बताया नहीं कि कौन उनका शौहर है, तो फिर अल्लाह ही होगा, अल्लाह ही होगा नाउज बिल्ला। ठीक है, तो ये जो होगा होता है ना, ये होगा ये हैगा से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होती। हमारे यहाँ एक पपेट शो आता था पाकिस्तान में बचपन में जो है वो हम भी देख लिया करते थे कभी, पपेट शो, वो हैगा उसमें एक होता था, वो अजीब किस्म का एक पपेट होता था उल्टी सीधी बस, है ना। तो यानी इस हैगा और होगा की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जैसे कि अंग्रेजी में आप जानती हैं इसको क्या कहते हैं, अजम्पशन। ठीक है, और अजम्पशन का मतलब अब तो सबको पता ही होगा कि क्या मतलब होता है इसका, होते होते सबका कोई ताल्लुक होता है अजम्पशन का। ठीक है, तो ये तो अजम्पशन है ना भाई। दलील तो वो चीज होती है कि जिसके पीछे कुछ ठोस रियलिटी हो। ठीक है, होगा जो है ना ये कोई दलील नहीं होती, तो ठोस रियलिटी होगी तभी दलील उसकी तरफ पॉइंट करेंगे। दलील किस चीज को कहते हैं? दलील तो पॉइंटर को कहते हैं, तो पॉइंटर किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है तो भाई वो चीज एग्जिस्ट करती है तब उसकी तरफ पॉइंट करेगा ना। तो दलील तो कोई चीज हो ही उस वक्त सकती है कि जब जिस तरफ वो पॉइंट करती हो वो चीज एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, अजम्पशन इसके बरक्स दलील हो ही नहीं सकता। अजम्पशन को तो खला में बातें कर रहे हैं, बस वैक्यूम में बातें कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो इस जुमले में इसका जवाब दे दिया कि अल्लाह ताला को सब तरह कुदरत कामिला हासिल है कि जो चाहे जिस तरह चाहे पैदा कर दे, जैसे कि आयत इन्ना मसला ईसा इन दल्लाही का मसले आदम में इसी शुबों का इजाला फरमाया है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तख्लीक आम कानून कुदरत से अलग होना उनकी खुदाई की दलील नहीं हो सकती। ठीक है ना, तुमने बस अजम्पशन किया हुआ है, दलील नहीं हो सकती ये चीज। ठीक है, चूंकि कोई बाप नजर नहीं आता तो अल्लाह उसका बाप होगा, ये तो ऐसे ही हो गया कि क्योंकि दिमाग नजर नहीं आता तो दिमाग नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो तुम्हें कोई चीज नजर नहीं आती तो वो नहीं होगी। अब मुझे दीवार के पीछे जो है वो कोई चीज नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब यह कि दीवार के पीछे कुछ भी नहीं है, ये तो बेवकूफी की बात हुई ना, दलील तो ना होगी ना। देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो हफ्ता आला ने बा माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमा दिया था, जिसको तुम भी मानते हो ना, मुत्तफ़क़न अलैह है ना हमारे और तुम्हारे दरमियान, कि आदम अलैहिस्सलाम का कोई ना बाप था ना माँ थी, तो जिस अल्लाह ने उसको पैदा फरमा दिया तुम खुद ही कहते हो कि अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर ईसा को बगैर बाप के पैदा करना क्या अल्लाह ताला के लिए मुश्किल काम था। वो उनको सब कुदरत है, वही खालिक व मालिक और लायक इबादत हैं, दूसरा कोई उनका शरीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को ये लोग अल्लाह का बेटा या तीन में से तीसरा, ये सब जो करते रहते थे ना, तो बस अजम्पशन की बुनियाद पे करते थे, और जो उनकी अजम्पशंस थी अल्लाह ताला ने उन्हीं की नफी करी। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला जो यहाँ पे बात फरमा रही हैं, तो वो एक मखसूस ऑडियंस के लिए फरमा रहे हैं ना। अब आज की ऑडियंस जो है, जो कि ना ईसाई ना मुसलमान ना यहूदी, बल्कि साइंस साइंटोलॉजी वाले दीन को बिलोंग करने वाले हैं। ठीक है, तो अब साइंटोलॉजी वाले दीन को बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं, तो भाई ये जो दलीलें हो रही हैं, ये तो ईसाइयों के से बात कर रही हैं। तो साइंटोलॉजी के दलील के लिए तो फिर दूसरी दलील कुरान की कहीं और जगह से आ तो आपको निकालनी होगी, या ये कि आप और अकली दलाइल की बुनियाद पर उनको जवाब देंगे। ठीक है, जो साइंटोलॉजी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है ना, तो अब कोई साइंटोलॉजी वाला कहे कि नहीं, ये क्या दलील हुई अल्लाह के होने और अल्लाह के अलग होने के, और तो भाई ये दलीलें जो है वो ईसाइयों के लिए थी यार, ये तुम्हारे लिए थी नहीं। ठीक है, ये दलील तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम यू आर अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ठीक है ना, दे वर अ डिफरेंट प्रॉब्लम, उनको इन दलाइल के जरिए से एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है, अब ये तुम अपने तराजू पे तोलने की इनको कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें बात नहीं समझ में आएगी। अच्छा, तो ये तो खैर इन आयात की बात मुकम्मल हो गई इंशाल्लाह। आगे हम चलते हैं कि आयत नंबर 19, सिर्फ एक आयत को हजरत ने फिर अलग से ग्रुप एक मजमा बनाया उसका। फरमाते हैं अल्लाह ताला, जैसे फरमाते हैं औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, या अहलल किताबी قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير। ठीक है, अच्छा एक चीज अभी और फिर जहन में आई, वही बात जो पीछे कर तो दी है लेकिन शायद वो मुकम्मल ना हो, या आप भी सोच रहे होंगे यार ये इन्होंने क्या बात कर दी है। ठीक है, तो इस वजह से ये बात भी कर देते हैं कि भाई ये साइंटोलॉजी की बात क्यों करी, उस वजह से क्योंकि इस वक्त जो हम लोग हैं ना, हम लोग तो बाइबल यानी ना, हम लोग समझाती है कि हम हमारे दरमियान रहने वाले जो मुनकिरीन हैं, कुरान का इनकार करने वाले हैं, या जो है वो हदीस का इनकार करने वाले हैं, ठीक है, या दीन का ही इनकार करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे दरमियान रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो अब ये लोग जो है ना, ये बाइबल की बुनियाद पर कुरान का इनकार नहीं करने वाले लोग हैं। ठीक है ना, अगर बाइबल की बुनियाद पर या ईसाइयों की जो जो उनके पेशवा होते हैं उनकी बातों की बुनियाद पर अगर वो कुरान को का इनकार करते हैं ना, तो उनसे फिर बाइबल की बुनियाद पे बात की जाएगी। ठीक है ना, कि देखो बाइबल में ये लिखा हुआ है, देखो तुम भी इस बात को मानते हो, देखो तुम्हारे नजदीक भी ये बात एग्रीएबल है, एग्रीड अपॉन है, तो तुम फिर ये बात भी मानो। ठीक है, लेकिन हमारे दरमियान जो ज्यादा अक्सरियत डिनायर्स की है ना, वो बाइबल की बुनियाद पर डिनाई करने वालों की नहीं होती है, बल्कि वो किन की किस बुनियाद पर होती है, वो साइंस की बुनियाद पर डिनाई करने वालों की। ठीक है, तो अब साइंस की बुनियाद पर जो डिनाई कर रहा है कुरान को, तो उसके सामने आप बाइबल वाली दलील नहीं रख सकते ना भाई, वो बाइबल वाली दलील बाइबल की बुनियाद पर डिनाई करने वालों के सामने रखी जाएगी। साइंस की बुनियाद पर जो डिनाई करे, तो उसके सामने तो फिर आपको उस किस्म की कोई दलील रखी रखनी पड़ेगी ना, जो कि साइंस जिसका इनकार ना कर सकती हो, या साइंसदान जिसका इनकार ना कर सकती हो। ठीक है, तो इस वजह से कोई इन बातों को देख करके कहे कि नहीं मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, तो ये तो बात गलत है, वो भाई आप की बात ही नहीं की जा रही यहाँ पर यार, आपसे बात ही नहीं की जा रही। ठीक है, तो इस वजह से आप इस परेशानी में उतना रहो। अच्छा, तो आगे जो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ए किताब वालों, तो किताब से यहाँ पर मुराद आसमानी किताबें तौरात और इंजील, तफसील के साथ पीछे हम जब जबाइह की बात हो रही थी, जबीहा की, उसके अंदर ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो ए अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना, तहकीक के तुम्हारे पास आ चुका है हमारा रसूल, तुम्हारे पास आ चुके हैं हमारे रसूल, युबय्यिनु लकुम अला फतरतिम मिन अर्रुसुल, के वो क्या करते हैं रसूलुना, युबय्यिनु लकुम, वो खोल करके बयान करते हैं, यूबैनो अबाना यूबीनो, क्या है, क्या इसकी वो बनेगी, बैयना युबैन, बैयना युबैन, ठीक है। तो वो खोल करके बयान करते हैं तुम्हारे लिए अला फतरत मिन रसूली, रसूलों के इनकिता के बाद। फतरा का जो लफ्ज है फतरतुन, इसकी तहकीक आगे भी आ रही है मारूफ मसाइल में, लेकिन अभी खाली इतना कि एक गैप पीरियड जो होता है ना उसको फतरा कहते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर लोग गैप ईयर लेते हैं, या आप जो है वो और कोई गैप वैप लेने, तो उसको उसके लिए अरबी का लफ्ज फतरा का इस्तेमाल होता है। तो रसूलों के दरमियान जो गैप आया ना, तो उस गैप के बाद अला फतरत मिन रसूल, गोया कि उस गैप के एंड पर वो रसूल तुम्हारे पास आया जो कि खोल खोल के बयान करता है। अन तकूलू मा जाअना मिन बशीरन, ठीक है, कि तुम ये ना कहने लगो। अन तकूलू, यहां पर अन का जो तर्जुमा तो कह से किया जाता है, लेकिन हजरत ने यहाँ पे क्या लिखा है कि ताकि तुम ये ना कह सको, कभी तुम कहने लगो, यानी ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास ना कोई जन्नत की खुशखबरी देना देने वाला, बशीर, बशीर कहते हैं बशारत देने वाले को, वला नजीरन, और नजीर कहते हैं डराने वाले को, ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास तो कोई बशारत देने वाला और कोई डराने वाला आया नहीं। फकद जाकुम बशीरुन व नजीर, बस तहकीक कंफर्म बात हो गई कि आ चुका तुम्हारे पास बशीर और नजीर, ठीक है। यानी वो एक ही फर्द हैं जो कि बशारत भी देते हैं और इंतजार भी करते हैं, यानी डराने का काम भी करते हैं। वल्लाहु अला कुल्ले शयइन कदीर, और अल्लाह ताला तो हर चीज के ऊपर काबिल, तो अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं। किसी को बशीर बना के भेज दिया, किसी को नजीर बना के भेज दिया, किसी को दोनों काम की जिम्मेदारी दे करके भेज दी, किसी को जल्दी भेज दिया, किसी को बहुत बड़े वक्फे के बाद भेज दिया। अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखते हैं, ठीक है। और जो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ऐसा करो तुम वैसा ना करो, तो उसके लिए पहले तुम्हारे पास दलील भेजते हैं और फिर तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ऐसे करो या तुम ऐसे सोचो, ठीक है। तो अल्लाह ताला तुम तक जो है वो नॉलेज पहुंचा देने के ऊपर भी कुदरत रखते हैं, ठीक है। और उसकी वजह यही कि तुम्हारे लिए एस्केप रूट्स कोई ना रहे, बहानेबाजी के मौके तुम्हारे पास से खत्म हो जाएं, ठीक है। यानी आप एग्जाम में किसी को बिठाते हैं ना, तो एग्जाम में बच्चे को बिठाने से पहले या अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एग्जाम रूम में बिठाने से पहले आप उनको पढ़ाते हैं, फिर उसके अंदर से एग्जाम देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाए बगैर आपने उनको बिठा दिया और उनको एग्जाम पेपर दे दिया, आप चलो सॉल्व करो इसको, ठीक है। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो जुल्म करेगा ना, ठीक है। वो तो ज्यादती कर रहे हैं ना कि भाई आपने कुछ बताया तो नहीं बच्चे को और उल्टा आपने एग्जाम में बिठा दिया, और ये भी कह दिया कि अगर पास हुए तब तो तुम्हारी खैर है, अगर फेल हो, वरना अगर तुम फेल हो ना फिर तो तुम्हारी खैर नहीं है। भाई ये तो सरासर ज्यादती और जुल्म है ना, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसे नहीं करते, ठीक है। अल्लाह ताला पहले नॉलेज पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद उसका एग्जाम लेते हैं, और यही तरीका भी एग्जाम लेने का। दुनिया एग्जाम के लिए ही बनाई गई है, तफरी और क्रिकेट खेलने के लिए तो बनाई नहीं गई है ना। तो खुलासे तफसीर पढ़ते हैं कि ए अहले किताब, तुम्हारे पास ये हमारे रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ पहुंचे जो कि तुमको शरीयत की बातें साफ साफ बतलाते हैं, ठीक है। रसूल का क्या काम है? शरीयत की बातें बतलाना, ठीक है। शरीयत की बातें क्या होती हैं भाई? शरीयत की बातें क्या होती हैं? शरीयत के लिए अंग्रेजी की जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है ना, वो लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, लीगैलिटी, ठीक है, के ये करो ये ना करो, ठीक है, ये करो तो तुम्हें फायदा होगा, ये ना करो तो तुम्हें नुकसान होगा, ये शरीयत की बात है, ठीक है। तो इसके लिए बकायदा एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है, लिखत पढ़त की भी शक्ल में होता है या ओरल फॉर्म में होता है। तो इस चीज को जो है ना वो शरीयत कहा जाता है, ठीक है। कुछ बातें जो हैं वो लीगल फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी जुबान के अंदर आप कहें तो उसको जो है ना वो वर्च्यूज कहा जाता है, वर्च्यूज। ठीक है, वर्च्यूज के बारे में, वर्च्यूज की क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या डेफिनेशन? वर्च्यूज आर यूनिवर्सल, वर्च्यूज आर यूनिवर्सल, यानी वो हर जगह एक ही रहती। जबकि अगर आप वैल्यूज की बात करें, नहीं, मोरल वैल्यूज, चले वर्च्यूज की एक्सप्लेनेशन में आपने मोरल वैल्यूज लिख दिया, ठीक है। मैं कहने ये वाला था कि दूसरी जो चीज होती है ना टर्म इसके अगेंस्ट, होती है वैल्यूज, ठीक है। तो जो वैल्यूज होती है ना, वो अंग्रेजी में ये लफ्ज ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, बेस्ड ऑन ए कल्चर और ए रीजन और ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं, किसी कल्चर की अपनी कल्चरल वैल्यूज होती हैं, किसी कल्चर की जो है वो, किसी नेशन की अपनी कल्चरल वैल्यूज होती हैं। तो वो ग्लोबल नहीं होती, वो यूनिवर्सल नहीं होती, वो लोकल होती, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ना, ये लोग जो है वो खुद भी डिवेलप कर सकते हैं, डिवेलप कर लेते हैं कि भाई हाँ भाई ये अच्छी चीज है और हम इसको अच्छा कहेंगे, और जो उसको करेगा तो हम उसको अच्छा मानेंगे, और अगर वो ये नहीं करेगा तो हम उसको अच्छा नहीं समझेंगे, ठीक है ना। हत्ता के ये इस लेवल तक भी चली जाती है कि भाई अगर आप किसी के घर जाएंगे तो वो आपके सामने अगर चाय पेश करें ना, तो अगर आपने चाय पूरी पी के खत्म कर दी तो इसका मतलब ये है कि आप नदीदे थे, नदीदे समझते हैं ना, नदीदे, भूखे नदीदे, ठीक है। आपने तो पूरी चाय पी ली, ठीक है, तो आपको नदीदा समझा जाएगा, और अगर आपने चाय थोड़ी सी छोड़ दी तो फिर आपको नदीदा नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज है। जबकि दूसरे कल्चर में आप चले जाएं, वहां पे अगर आपने पूरी चाय पी के खत्म ना करी तो वो कहेंगे यार इसका मतलब ये है कि उनको चाय पसंद नहीं आई, यार ये तो गलती हो गई, यार ये हमने अच्छी चाय नहीं बना के दी, इन्होंने थोड़ी सी चाय छोड़ दी है। और अगर उन्होंने चाय, अगर मेहमान ने चाय पूरी पी ली तो मेजबान साहब बड़े खुश होंगे, हाँ इसका मतलब ये है कि उनको हमारी चाय बड़ी पसंद आई, ठीक है ना। अब देखिए ये डिफरेंस हो गया ना दो कल्चर्स के दरमियान, एक जो है वो पूरी चाय पीने पर अच्छा फील कर रहे हैं, दूसरा जो है वो पूरी चाय पीने के ऊपर जो है वो उनको बुरा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं होती। तो ये लोकल वैल्यूज जो होती है ना, या तो ये लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर डेवलप हो जाती हैं, तो उसको उनका लीगल फ्रेमवर्क भी आप कह सकते हैं, या ये कि ऊपर से कहीं से जो है वो आई होती हैं, ठीक है, कि भाई ये सही है, ये ऐसे अच्छा है और ऐसे जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क जो है ना, ये इस कंट्रोल्ड, ठीक है, या तो लोग खुद डेवलप कर लेते हैं अपना लीगल फ्रेमवर्क, या ये कि ऊपर से आता है, ये सही है ये नहीं है। क्या मतलब ऊपर से आता? ऊपर से आने का मतलब ये है कि समवन विल टेल देम व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज, ठीक है, ये उनकी फितरत में नहीं है, इंसान की फितरत में नहीं है। यूनिवर्सल वैल्यूज, या जिसको आप वर्च्यूज कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि हर इंसान की फितरत में, इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई लॉ बताने वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप बाकी लोग समझ ही गए होंगे, जो लोग क्लासेस ज्यादा सुनते हैं, या सैटरडे की क्लास जिन्होंने ली, जिन्होंने जुम्मे का बयान सुना, या इवन उससे पहले भी जो, कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बात उसी चीज की कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, वो यही है कि जो शरीयत के अहकाम होते हैं ना, ये तो रसूल के जरिए से इंसानों तक पहुंचते, ठीक है, लेकिन तौहीद, इसके लिए किसी रसूल की जरूरत नहीं होती। तौहीद के सिर्फ और सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह है, इसके लिए किसी रसूल की जरूरत नहीं है इंसान, ये इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने गूंद दिया, और हर इंसान की फितरत, दिस इज यूनिवर्सल। हत्ता के उलमा ने तो यहां तक लिखा कि आखिरत का तसव्वुर जो है ना, यानी सजा और जजा का जो तसव्वुर है, ये भी यूनिवर्सल है, इसके लिए भी किसी रसूल की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि अच्छी वर्च्यूज को जो फॉलो करेगा तो उसको जजा मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा, और जो अच्छी वर्च्यू के खिलाफ जाएगा उसको सजा मिलेगी, ये भी ह्यूमन वर्च्यूज के अंदर है, या ये भी जो है वो फितरत के अंदर शामिल है, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें वो फितरत के अंदर शामिल नहीं है, उसके लिए अल्लाह ताला रसूल को भेजते हैं बताने वाले, चाहे वो नबुवत वाला रसूल हो चाहे वो रसूल का कोई मैसेंजर हो, ठीक है। तो फरमाया कि आ पहुंचे जो कि तुमको शरीयत की बातें साफ साफ बतलाते हैं, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने क्या चीज फर्ज करी है, क्या चीज जो है वो हराम करी है, क्या चीज जो है वो मुस्तहब करी है और क्या चीज मकरूह करी है, क्या चीज मुबाह करी है और क्या चीज जो है वो मकरूह की दूसरी वाली कसम, तंजीही तहरीमी वगैरह है, ये तफसीलात जो है ना ये रसूल आकर के तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं। ऐसे वक्त में कि रसूलों के आने का सिलसिला मुद्दत से मौकूफ था, ठीक है, पॉज लगा हुआ था उसके ऊपर, और शराए साबिका मफकूत और गुम हो चुकी थी। पीछे जो रसूल आए थे तो उनकी जो शरीयतें थी वो मफकूत हो चुकी थी, यानी लॉस्ट हो चुकी थी, आम तौर पर लॉस्ट हो चुकी थी, खास जगहों से लॉस्ट नहीं हुई थी लेकिन आम तौर पर आवाम की तरफ से, आवाम के पास से वो गुम हो चुकी थी। और अंबिया का सिलसिला अरसे दराज तक बंद रहने से उन गुमशुदा शराए के दोबारा दरियाफ्त होने का इम्कान भी ना रहा था, ठीक है, कि कोई था ही नहीं ऐसे लोगों में से जो कि खुल करके सामने आकर के बताए कि भाई ये जो ये ईसाई कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, असल में तो ये थी ईसाइयत, ऐसा कोई भी नहीं रहा था, ठीक है। इसीलिए अब किसी रसूल के आने की शदीद जरूरत थी, तो ऐसे वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना बड़ी नेमत और गनीमत समझना चाहिए, ताकि तुम कयामत में यूं ना कहने लगो, ये जो है ना अंतकुलू, ये कयामत में तुम यूं ना कहने लगो कि दीन के मामले में गलती और कोताही में हम इसलिए माजूर हैं कि हमारे पास कोई रसूल जो कि बशीर और नजीर हो, जिससे हमको दीन का सही इल्म और अमल पर उभार पैदा होता नहीं आया। सो अब इस उजर की गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे पास बशीर और नजीर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। अब ना मानो तो अपने अंजाम को खुद समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है ना वो किन से खिताब कर रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला खास अहले किताब से खिताब कर रहे हैं, या अहलल किताब, ठीक है। तो इनका मसला क्या था कि इनके पास जो है वो अल्लाह की किताब जो है वो मौजूद तो थी, लेकिन ना तो खुद उसके ऊपर अमल करते थे और ना जो है वो अपनी अवाम नास को बताते थे कि अल्लाह की किताबों के अंदर क्या हुक्म है, किस चीज से मना किया गया है, नहीं बताते थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, तो उससे फिर ये होता है कि अवाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं ना चीजें, और जो उलमा है ना उनमें भी फिर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हाँ यार सब चलता है ना, बस जिस तरह गुजारा हो रहा है बस इसी तरह से चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है, बस चल रहा है मामला, ठीक है। तो अगरचे कि उनकी लाइब्रेरी के अंदर हकीकत लिखी हुई मौजूद है, ठीक है, या उनकी क्लासरूम के अंदर तो हकीकतें डिस्कस हो रही हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन जब जैसी वो क्लासरूम से बाहर आते हैं ना, बस उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होती उन बातों की जो कि क्लासरूम के अंदर वो खुद पढ़ करके आए हैं, बल्कि खुद पढ़ा करके आए हैं अपने तलबा को, जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकले खत्म, नो रेलेवेंस, नो एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ को या ओवरऑल जो दुनिया में मामला चल रहे हैं ना, उनको फिर उस इल्म के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, अगरचे कि उनके पास इल्म मौजूद लेकिन कनेक्शन खत्म हो गया। अवाम के पास इल्म ही मौजूद नहीं है तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फर्क होता है उलमा में और अवाम में, लेकिन अमल जब खराब हो जाए तो फिर उलमा और अमल और अवाम जो है ना फिर वो एक ही जैसी हरकतें कर रहे, ठीक है। तो यही काम, यही जो सिचुएशन हो गई ये अहले किताब के साथ हो चुकी थी वाली सिचुएशन, ठीक है। तो इल्म तो इनके पास था कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब वो दो नमाजों का तो इल्म था ना कि भाई दो नमाजें अल्लाह ने फर्ज करी है, ठीक है, लेकिन वो दो नमाजें भी सही तरह नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। इस ये एक मिसाल के तौर पर खाली आपको दिया है कि भाई इनके पास अल्लाह ताला के जो फराइज थे उनका इल्म था, जैसे मिसाल के तौर पर वो अगर औरत मर्द से जो है वो किरदार का गुनाह हो जाए तो उनको ऐसे सजा देनी चाहिए, ये इनके पास इल्म था, ठीक है, लेकिन सजा देते नहीं थे कि भाई वो किसी अमीर ने एक दफा ये गुनाह किया था तो इन्होंने जो है वो उसको सजा नहीं दी, तो फिर जो है वो किसी गरीब ने वही वाला गुनाह किया तो उसको जो है वो सजा देने के लिए आया, तो अवाम तो उनके गले पड़ गया कि ये तुम क्या है, तुमने अमीर को तो सजा दी नहीं, गरीब को तुम क्यों सजा दे रहे हो, तो एक हंगामा मचा दिया लोगों ने। तो उन्होंने कहा यार छोड़ो यार, किसी को भी सजा नहीं देते, ठीक है ना। जो असल सजा है ना रजम की, ये उनकी किताबों में भी था कि रजम की सजा देनी, लेकिन अपनी इन कमबख्तियों की वजह से कि अमीर को नहीं देनी गरीब को देनी है, बिलाखिर ये नौबत आ गई कि किसी को भी देनी है। अब क्या कि अगर किसी ने गुनाह किया है और पकड़ा गया है सबूत के साथ, तो फिर उसको ना वो गधे पे बिठा करके उसको जो है वो चक्कर लगवा देंगे। बस नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में यही हरकत कर रहे थे लोग, लेकिन वो तो पकड़ लिया अब्दुल्ला बिन सलाम ने, सुल्तान उन्होंने, कि किताब में तो लिखा हुआ है कि रजम की सजा है और ये जो है ना वो छुपा रहे हैं उसको। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से जो है ना वो इल्म होने के बावजूद अमल खत्म हो जाता है। जैसे हमारे साथ भी यही हुआ ना, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा भी लिया हुआ है, तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक की जमात जो है वो हमेशा रही और रहेगी, जब तक ये ईमान वाले खत्म ना हो जाए दुनिया से, उस वक्त तक तो रहेगी कम से कम, ठीक है। लेकिन अवाम के साथ क्या हुआ कि इल्म तो सारा मौजूद था, कुरान क्या किसी वक्त कुरान दुनिया से उठ गया? नहीं, कुरान तो उस वक्त भी मौजूद था जब ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इंडिया पे कब्जा कर रही थी, उस वक्त भी कुरान मौजूद था, बल्कि खाली कुरान मौजूद नहीं था बल्कि हदीस भी मौजूद थी पूरी की पूरी, राइट, और शुरुहात भी सारी की सारी मौजूद थी और तफासीर भी सारी की सारी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था, लेकिन उसके साथ कनेक्शन खत्म, अवामुन नास का बिल्कुल ही कनेक्शन खत्म। और जो उलमाए कराम थे, उलमाए सू, तो उनका हाल यही था, क्लासरूम में तो पढ़ाते थे, क्लासरूम के बाहर खत्म, ठीक है। तो इल्म का ना होना मसला नहीं होता, बल्कि इल्म के साथ कनेक्शन का ना होना ये मसला होता है, ठीक है। तो अवाम स्टॉप सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द उलमा, ठीक है, तो वही कनेक्शन खत्म, क्योंकि उलमा जो थे, जो उलमाए सू थे, तो उन्होंने जो है वो इल्म बताना छोड़ दिया, और अवाम जो थे उन्होंने उलमाए हक के पास जाना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो बड़ी मुश्किल होती है यार, वो तो मना कर देते हैं ये नहीं करो ये नहीं करो, उलमाए सू जो हैं वो मना ही कुछ नहीं करते, वो कहते हैं हाँ यार जरा तोहफे शोहफे दो, थोड़ा खीर शीर खिलाओ हमें, बाकी सब ठीक है तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए ऊपर जाके सिफारिश सिफारिश कर दिया करेंगे। तो वो कहते हैं यार चलो यार ये अच्छे उलमाए, तो वो उलमाए सू के पास जाते हैं जहां से इल्म शिल्म कोई नहीं मिलता। तो बहरहाल ये होता है, तो फरमाया कि तो तुम्हारे पास बशीर और नजीर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, अब ना मानो तो अपने अंजाम को खुद समझ लो, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखते हैं कि जब चाहे रहमत से अपने अंबिया भेज दें और जब चाहे हिकमत से उनको रोक लें, इसलिए किसी को यह हक नहीं है कि जब जब मुद्दत दराज से अंबिया का सिलसिला बंद है तो अब कोई रसूल नहीं आ सकता। यानी ये कहना कि अब कोई रसूल नहीं आ सकता क्योंकि ये तो नरसे से नहीं आया, भाई कैसे नहीं आ सकता, क्या दलील है तुम्हारे पास कि नहीं आ सकता, बस ऐसी गुमान, क्योंकि अब तक नहीं आया इस वजह से अब तो अब आएगा ही, क्योंकि ये सिलसिला एक मुद्दत तक मौकूफ रखना हक ताला की हिकमत से था, उसने सिलसिला नबूवत बंद और खत्म कर देने का कोई ऐलान उस वक्त तक नहीं किया था। भाई अल्लाह की तरफ से कोई ऐलान आता, कैसे आता है अल्लाह की तरफ से ऐलान, लाउड स्पीकर पे अल्लाह की आवाज आती है? नहीं, अल्लाह की तरफ से ऐलान ऐसे नहीं आता। अल्लाह की तरफ से ऐलान कैसे आता है, जब कोई सादिक और अमीन शख्स जो कि लोगों में सादिक और अमीन की हैसियत से मारूफ होता है, ये नहीं कि गार में छुपा हुआ था और फिर गार से निकल करके आ गया और उसने अपने आप को सादिक और अमीन कहना शुरू कर दिया तो लोगों ने उसको सादिक और अमीन मान लिया, नहीं, ये सादिक और अमीन नहीं होता, बल्कि सादिक और अमीन वो होता है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड होता है पहले से, ठीक है, जिसको लोग जो है ना वो इनसाइड आउट जानते हैं, उसके खानदान को भी जानते हैं, उसके माजी को भी जानते हैं, उसका हुदूद अरवा भी जानते हैं, उसकी माजी की जिंदगी भी जानते हैं, और सब गवाही देने के लिए तैयार हैं कि हाँ ये सादिक अमीन है, वो होता है सादिक, ठीक है, वो होता है सादिक अमीन। तो अल्लाह का पैगाम कैसे आता है, इस सादिक और अमीन बंदे के वास्ते से, लाउड स्पीकर पे ऐलान नहीं होता, ठीक है। तो जब ये ऐलान आया ही नहीं कि अब कोई नबी नहीं आएगा, तो अब तुमने किस बुनियाद पर ये फैसला कर लिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा? बस वही बात, अजम्पशन है ना, ये SSUME वाले की बुनियाद पर तुमने फैसला कर लिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा। जिस तरह तुमने ईसा अलैहि सलाम के बारे में फैसला कर लिया कि वो अल्लाह के बेटे हैं बेस्ड ऑन अजम्पशन, उसी तरह भाई अजम्पशंस की बुनियाद पे जिनका मामला चल रहा होता है ना, फिर यही करते हैं वो सारे, हर मामले में वो यही करते हैं, बस ये पढ़ के आपकी जान छोड़ते हैं, टाइम तो खत्म हो गया। तो मैं कि जी भाई ऐलान तो कोई आया नहीं था, बल्कि पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए ये खबरें भी दे दी थी कि आखिर जमाने में एक खास रसूल खास शान और खास सिफात के साथ आने वाले हैं, जिन पर नबूवत का अख्तितम होगा, उससे पहले नबूवत का अख्तितम नहीं होने वाला। इस ऐलान के मुताबिक खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, ठीक है। तो ये इन सबको पता था कि आखिरी नबी अभी आने रह गए हैं। यहूदी पूरे शाम को छोड़ करके मदीना मुनव्वरा मुंतकिल क्यों हुए थे? आखिरी नबी के इंतजार में। ये जो औस और खजरज के कबाइल थे, ये यमन को छोड़ करके यहाँ पे आके मुंतकिल क्यों हुए थे? आखिरी नबी के इंतजार में, ठीक है ना। तो अच्छी तरह इन सबको पता था, लेकिन बस वही है, चलती का नाम गाड़ी, बस मामला चल रहा है तो बस अजम्पशन के बस ऐसे ही चलता रहेगा। और भाई ऐसे नहीं चलेगा यार, इज गोइंग टू चेंज, जैसा कि खबर दी गई है ना, उसके मुताबिक ही मामला होंगे। तो बेहतर यह है कि अजम्पशन में पढ़ने के बजाय इल्म हासिल करो, और उस इल्म के ऊपर फिर अमल करने की मेहनत करो, तभी जो है वो निजात मिलेगी। वरना आंखें बंद कर लेने होता है ना, वो क्या है मिसल के, हिरन के सामने जब शेर आ गया ना, तो हिरन ने आंखें बंद कर ली ताकि शेर नजर ना आए, तो आंखें बंद करने से क्या शेर भाग जाएगा वहां से, या शेर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा? नहीं, वो तो हिरन को खा लेगा, आंखें बंद करने से तो शेर गायब नहीं हो जाएगा ना। तो अब करना क्या चाहिए था भाई, भागो, दौड़ो उधर से, भागने का रास्ता तलाश करो, निकलने का रास्ता तलाश करो, तब शेर से तुम्हारी हिफाजत होगी। यही मामला हमारा भी है कि हम भी ना आंखें बंद करने लोगों शक्ल को समझते हैं कि सब ठीक है और ये ठीक ही रहेगा, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक। तो इल्म हासिल करना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और जाहिर है पर उसके बाद अमल भी करना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सब कुछ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।